यथा मयोंगे संप्रेक्षित और निर्भी न शक्यते रूढ़ पद चिकित्सित जथेन्द्रिय ग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर महान बद्ध बलो न चाल जाते। ठीक है, पढ़िए। में तो कोई प्रपाट नहीं है, अनुवाद है। मैं शब्दार्थ बोल देता हूँ। यथा जिस प्रकार आमय व्याधि अंगे शरीर में समुपेक्षिता उपेक्षित हो जाने पर अर्थात उचित चिकित्सा औषध आदि नहीं लेने पर और कुपथ्य का सेवन करने पर रूढ़ पदा जड़ जमा लेता है तब चिकित्सितुं चिकित्सा करने पर भी उसका शमन नहीं होता है, न शक्यते। और इसके साथ ही जैसे इंद्रियों का समूह उपेक्षित होने पर, उनको मनमाना छोड़ देने पर रिपुर शत्रु महान बढ़ जाता है, बद्ध बल और सेना संचय करके ये देव बहुत अपनी जड़ जमा लेता है। तो फिर बहुत बड़ी सेना द्वारा, बहुत बड़े युद्ध द्वारा इस शत्रु को परास्त नहीं किया जा सकता है।
जिस तरह शुरू में लोग की उपेक्षा करने से वह गंभीर तथा दुस्साध्य हो जाता है, या जिस तरह प्रारंभ में नियंत्रित न करने से बाद में इंद्रिय बस में नहीं रहती, उसी तरह यदि आरंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में वह अव्यय हो जाता है।
इस अध्याय को पूरा करना था इसलिए मैं इस श्लोक को लिया। यह श्लोक कंस के मंत्रियों का बोला हुआ है। कंस के मंत्रिमंडल की बैठक हुई ठीक जन्माष्टमी के रात के बाद। कंस सभी मंत्रियों को बुलाया, प्रलंब केसी चारुण आदि, और बड़ा चिंतित था, उसका चेहरा गिरा हुआ था, बहुत बड़ी चिंता में था, क्योंकि उसने ये सुन लिया रात को माता दुर्गा के द्वारा कि उसकी मृत्यु है, उसको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका। इस बात से कंस को बड़ा उद्वेग हुआ। वो सोच रहा था कि मैं देवकी के पुत्रों की हत्या किया, 6 पुत्रों व्यर्थ है। और माता दुर्गा ने यह भी कह दिया कि आप बच्चों की हत्या मत करो, लेकिन असुर असुर होते हैं। कंस भय से कांप रहा, हाय हाय मैं इतना बड़ा पाप किया और फिर भी मुझे मारने वाला जन्म नहीं दिया, जिसके जन्म की वो प्रतीक्षा कर रहा था। आकाशवाणी में सुन लिया था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, तो 8वां गर्भ जब जन्म लिया उसको खबर दी गई, तो हाथ में तलवार लिए आया, बार बार बोल रहा था कहाँ है कहाँ है। तो देवकी ने योग माया की रक्षा के लिए, अपने बच्ची की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किया, कंस से विनय किया, पर कंस माना नहीं, बच्ची को मारना चाहा, उसके हाथ से उड़ गई। नीचे जाने के बजाय ऊपर आकाश में चली गई और उसी ने यह भविष्यवाणी किया कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, देवकी के अलावा दूसरी जगह उसका जन्म हुआ है। तुम्हारे पूर्व जन्म का उस शत्रु तुम्हारा वध करेगा निश्चित। तुम अपने कल्याण की बात सोचो। ऐसा कह करके जो माया ने गमन किया, अंतरहित हो गई आकाश में। इस घटना को देख करके कंस बहुत घबराया और इमरजेंसी मीटिंग बुलाया सवेरे सवेरे। मंत्रियों से राय लेने के लिए क्या करना चाहिए। उसने सारी बात सुनाया और निचोड़ उसका यह था कि हमको मारने वाला जन्म लिया है हमारे शत्रु, हमको पूर्व जन्म में भी मारा था। मेरे गुरु ने कहा कि तुम कालनेमी असुर थे और तुमको विष्णु ने मारा है, कई जन्मों में वो मारा हमको, तो हमारा पूर्व शत्रु। तो सभी मंत्री जुटे थे और लगा कहने मैं बहुत चिंता में हूँ, क्या किया जाए। और योग माया ने ये भी नहीं बताया कि कहाँ जन्म लिया, क्या करें, बहुत चिंता हो रही है, हमको कभी भी आकर को मार सकता है, कोई डेट नहीं है, कभी भी आकर को मार सकता है, यही चिंता है। तब मंत्रियों ने कहा कि सरकार हम आपके सेवक हैं, आपको ऐसे उदास नहीं होना चाहिए, हम लोगों के रहते रहते आप इतने उदास होंगे ये ठीक नहीं है, आप पहले कुछ बात याद कीजिए, आपने बहुत से युद्ध किए हैं, देवताओं को परास्त किया है, देवताओं से आपको कोई भय नहीं है, देवता आपके सामने हाथ जोड़ते हैं युद्ध में और भाग जाते हैं, कोई कोई आपकी शरण में गिर जाते हैं पगड़ी खोल करके, अपना जैकेट आदि गारमेंट ढीला करके आपके शरण में गिर जाते हैं, आप उनको छोड़ देते हैं, यही भूल हुई। अगर पहले देवताओं को मारे होते तो इतना वे लोग गरजते नहीं। आपको धोखा दिए हैं देवता, उनमें कोई शक्ति नहीं है, धूर्त है, आप उपेक्षा कर दिए इसीलिए उनका मन बढ़ा हुआ है। कंस ने कह दिया फिर भी मुझे भय है, चार बड़े देवता हैं हरि, विष्णु, शंकर, इंद्र और ब्रह्मा, चार बड़े शक्तिशाली क्षमता वाले देवता हैं। तब मंत्री समझाते हैं ठीक है, हरि शक्तिशाली है जरूर, उसके हाथ में सुदर्शन है, वो अब तक असंख्य असुरों का वध किया है, शंकर के त्रिशूल में भी बहुत शक्ति है, अभी बहुत से असुरों का वध किया है, लेकिन इंद्र बहुत अल्प बीज वाला है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, अल्प शक्तिशाली शक्ति वाला है। और जहाँ तक ब्रह्मा की बात है, ब्रह्मा तो हमेशा ध्यान में रहता है, कभी ध्यान टूटता है तो वेद पढ़ने लगता है, कभी लड़ाई झगड़ा किया नहीं, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, सारे देवता आपसे हारे हुए हैं, इतनी चिंता मत कीजिए। आप जब इतनी चिंता करेंगे तो हम लोगों की क्या दशा हो, ऐसे समर्थ सेवकों के होते हुए स्वामी इस तरह चिंता करें, इतना टेंशन में हो जाए, ये उचित नहीं है। अब से पूरा उपाय करके, पूरी शक्ति लगा करके देवताओं के जड़ को उखाड़ना है, उपेक्षा नहीं करनी, उनको छोड़ना ही नहीं है, भले ही वे कमजोर हों तुच्छ हैं, लेकिन समय पा करके अपनी सेना जुटा करके वे खतरा पैदा कर सकते हैं, तो निराश मत रहिए, पूरी शक्ति लगा करके देवताओं की जड़ उखाड़ना है। कंस ने कहा हरि का पता नहीं है, तो उसने मंत्री ने कहा ठीक है, हरि का पता लगाना कठिन है, लेकिन हम दूसरे उपाय से हरि का जड़ उखाड़ देंगे, उसका वध हो जाएगा तो सारे देवता अपने आप मर जाएंगे, सभी देवताओं को वही आश्रय देने वाला है। और तब तक हम लोग उपाय करें, जन्म लिया है तो भी बच्चा ही होगा ना, चाहे एक दिन का दो दिन का, जैसा आप कहते हैं कि योग माया ने कहा है कि जन्म ले चुका है, कब ले चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा और 10 दिन पहले लिया हो, या कल परसों चौथे 3 दिन 4 दिन हुआ होगा उसको, या 2 दिन, कभी तो बच्चा होगा, उसको हम लोग खोज लेंगे कहीं ना कहीं, खोज करके नेति नेति कह करके खोजेंगे, कोई बाकी नहीं रहे, सब घर में, सब गांव में और सब नगरों में और अहिरों की बस्तियों में सब जगह खोजेंगे, जहाँ भी होगा, अभी तो वयस्क नहीं होगा, 10 दिन का होगा या 9 दिन का या 8 दिन का, तो 10 दिन से जितने भी कम बच्चे हैं कम उम्र के या 10 दिन से ज़्यादा के इस जिला में, मथुरा में, मथुरा के गली गली में हम जोहेंगे, और गोपों की बस्तियों में भी हम खोज करेंगे, कहीं होगा उसको हम मार डालेंगे। अब चिंता मत की, आपके लिए सदा के लिए शत्रु का विनाश कर देंगे। आपको भय की कोई बात नहीं रहेगी। तुम लोग बातें कर रहे हो, हमको तो सदा भय लगा रहता है। विष्णु का रूप हमारे सामने रहता है, वो सुदर्शन चक्र लिए हुए, गदा लिए हुए, पंचजन्य शंख, लिए हुए यही रूप याद आता है। मुझे तो लगता है कि बीच में हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मंत्री लोग यही समझाते हैं कि आपने शुरू शुरू में देवताओं पर केयर नहीं किया, छोड़ दिया, उपेक्षा किया, यही कारण है कि देवताओं का मन बढ़ गया है। अब आप हम लोगों को आज्ञा दीजिए, हम देवताओं की जड़ उखाड़ देंगे। बस आपके अप्रूवल की जरूरत है। आप हम लोगों को अनुमति दीजिए। और वे दैत्य थे, सभी मंत्री थे, वे लोग बताए कंस को, देखिए उपाय करने से शत्रु का नाश हो जाता है। दो उदाहरण दे, जैसे कोई रोग शुरू शुरू में यदि चिकित्सा की जाए या औषधि का सेवन किया जाए, उचित आहार लिया जाए, तो रोग बढ़ेगा नहीं। अब तक देवताओं का नाश पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इसमें हम सब लोगों की गलती है। और मुख्य गलती आपकी है। आप इतने दयालु बन गए देवताओं के प्रति, आपकी दया ही आपके लिए घातक सिद्ध हुई। देवता छल से आपकी शरण लेते हैं, आप उनको छोड़ देते हैं और बाद में वही आपका अनिष्ट करते हैं। देवताओं ने प्रार्थना किया है विष्णु से, विष्णु प्रकट होकर तो उन्होंने कहे चिंता मत करो, मैं हूं ना। कंस क्या, कंस के सभी संबंधियों की मैं हत्या करूंगा। तब दैत्य मंत्रीगण कहते हैं, यथेन्द्रिय ग्राम उपेक्षित था, जैसे इंद्रियों का समूह उपेक्षित हो जाए, मनमाना उनको छोड़ दिया जाए उनके विषयों में, वे इंद्रियां बहुत बलवान हो जाती हैं, फिर कंट्रोल मानती नहीं है। जैसे आँख, कान, त्वक, आदि बहुत सी इंद्रियां हैं, तो शुरू में ही इन पर संयम रखना चाहिए। कंट्रोल का अर्थ है इनको मनमाना नहीं, उनके विषय में छोड़ देना चाहिए। कंट्रोल का अर्थ में यह नहीं है कि जैसे आँख को हम बंद रखें, माता गंधारी की तरह हमेशा पट्टी बांधे रहें, ये संभव नहीं है। देखना है लेकिन उनके उचित विषय में रूप देखना है। तो हम लोगों के लिए शिक्षा है कि उसे भगवान के श्री विग्रह को देखने में लगाएं, श्रीमद् भागवतम पढ़ने में लगाएं, भक्तों का दर्शन करने में। और श्रोण इंद्रिय है कान, कान को संयम में रखें, व्यर्थ की बात को, संसारिक बातों को न सुने। यदि कोई जगत चर्चा करता है या दूसरे की निंदा करता है तो हट जाना चाहिए वहाँ से, नहीं सुनना चाहिए। यदि छोड़ देंगे, सुनते रहेंगे, तब कान को वश में करना असंभव हो जाएगा, आदत हो जाएगी सुनते सुनते। और रसनेन्द्रिय जिह्वा, इसको इसके विषय में संयम पूर्वक लगाना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए कि जो खाना चाहे खा ले, जो चटनी या घी दूध मसाला मनमाना खाए। अगर इंद्रिय को हम रसनेन्द्रिय को इस तरह से छूट दे देंगे, उपेक्षा कर देंगे, तो यह क्या क्या नहीं चाहेगी। बाद में इस इंद्रिय को वश में करना असंभव हो जाएगा। इसी जिह्वा के कारण अनेक रोगों की वृद्धि भी होती है। सब जगह ये उत्पात हो रहा है, अनेक प्रकार के रेस्टोरेंट में मनमाना भोजन करने से रसनेन्द्रियों की उच्छृंखलता बढ़ती जाती है। सामान्य भोजन करना चाहिए, केवल देह और आत्मा को कायम रखने के लिए। स्वाद के लिए नहीं, जो भी भोग हैं संसार के अंत में वो दुख देते हैं। जैसे त्वगिंद्रिय का भोग है मुलायम गद्दे पर सोना या एसी चला करके रहना, ठंडा में गर्मी के मौसम में व्यक्ति ठंडा लेना चाहता है, तो इंद्रिय चमड़ा को सुख देने के लिए। लेकिन वो एसी हवा बहुत बुरी है, घातक है, तो जो ऐसा करते हैं एसी चला करके रहते हैं उनको आदत हो जाती है, वे एसी के बिना रह ही नहीं सकते। साधारण पंखा में भी रहते रहते आदत हो जाती है, बिना पंखे के नहीं रहेंगे, तुरंत आँख उप करने लगते हैं। भगवान ने गीता में ये बताया है, देह नस्मिन यथा देहे कौमारम जवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत मन में। हे अर्जुन, देही के इस देह में देहिना अस्मिन यथा देह, जीवात्मा के इस देह में कुमारावस्था आती है, कुमारावस्था बीत जाती है, इसके बाद जौवन आता है, जौवन के बाद वार्धक्य आ जाता है, और उसके बाद तथा इसी प्रकार से जैसे जवानी आती है, कुमारावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो एक दिन देहांतर भी होता है, ये नियम है। इसमें धीर पुरुष विचलित नहीं होता है। हम लोगों का बचपन बीत गया तो कभी चिंता होती है कि हाय हमारा बचपन बीत गया है। जवान है, जवानी बीत जाएगी तो कोई चिंता नहीं होगी। जवानी बीतती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो स्वाभाविक है चेंज। भगवान ने भी शब्द प्रयोग किया, शीतोष्ण सुख दुखदा, संसार में सीजनल चेंज जैसे होते हैं, शीत काल आता है, ग्रीष्म आता है, इसको सहन करना चाहिए, सब सहना चाहिए। सहने का ही अर्थ नहीं कि जा करके भट्टी में खड़ा हो जाए या पंचाग्नि तापे, जाड़ा में बर्फ से नहाए, ठंडे पानी में रहे, नहीं। जो स्वाभाविक शीतोष्ण होते हैं उसको सहे, तांग स्थितिक से स्वभारत, हे भारत इसको सहो। भगवान सहनशीलता सिखा रहे हैं। ऐसे मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ अपमान भी मिलेगा, कभी कभी मान मिलेगा, कभी कभी बहुत सम्मान मिलेगा। कभी लोग कहेंगे आपका जीवन सार्थक है, आप भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, आदर देंगे, पैसा भी देंगे, पर उसको भी सहना चाहिए। सहने का अर्थ है कि कभी फूल ना जाए, ये ना सोचे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, गर्व ना हो। सहने का अर्थ है सम्मान को भी सहना, अपमान को भी सह लेना। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त हैं, हमारा कभी अपमान नहीं होगा, हमेशा मान ही मिलेगा। ये संसार है, कभी अपमान भी होगा, अपमान में शुद्ध नहीं होना चाहिए और मान में भी शुद्ध नहीं होना चाहिए। मान मिलने पर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं योग्य हूँ इसलिए मेरा सम्मान हो रहा है। ये संसार की व्यवस्था है, यही स्वरूप है, सम्मान होगा, अपमान होगा। यहाँ तक भगवान कृष्ण जब इस जगत में आए तो बहुत बड़ी सभा हुई थी महाराज युधिष्ठिर की, राजसूय यज्ञ हुआ था, बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने ब्राह्मणों ने भगवान का स्वागत किया, अग्र पूजा हुई उस सभा में, सबसे पहली पूजा है। और समस्त ऋषियों ने स्वीकार किया कि वास्तव में पूजा के सम्मान के यही पात्र हैं। परंतु उसी सभा में भगवान का द्रोही खड़ा हो गया शिशुपाल और लगातार गाली देने लगा। उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि ये सभा बड़े लोगों की है, लेकिन सबकी मती मारी गई है, सब बेवकूफ हैं। ये युधिष्ठिर समस्त ब्राह्मणों को बुला करके सबका अपमान कर रहा है, ये ग्वाले की पूजा कर रहा है। जो गाय चराता था और गोपों के घर में माखन चुरा करके खाता था, दही खाता था, उस लोलुप ग्वाले की पूजा हो रही क्षत्रियों के समाज में, ब्राह्मणों के समाज में, छी छी, ठीक नहीं है। इस पर भी भगवान ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। जब युधिष्ठिर महाराज के पक्षपात भाई लोग खड़े हो गए, भीमसेन अर्जुन उससे बदला लेने के लिए, तो भगवान ने सबको रोका। उन्होंने यही कहा कि इसको जितना बोलना है बोलने दीजिए, सब कुछ सह है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही सभा में जहाँ बहुत बड़ा सम्मान मिला भगवान को, वहीं बहुत बड़ा अपमान। और कृष्ण सम रहे, पर बाद में जब भगवान ने देखा कि बहुत गड़बड़ हो गई है, डिस्टर्ब हो गई यज्ञ सभा, तो भगवान ने शांति से केवल चक्र को चला दिया, सुदर्शन चक्र को, तो शिशुपाल का मस्तक कट गया। कई लोग शिशुपाल के पक्ष के थे और अधिकांश लोग तो युधिष्ठिर महाराज के पक्षधर थे, तो झगड़ा नहीं हो पाया, शांत करा दिया भगवान। लेकिन कोई दुर्वचन नहीं बोले भगवान, कोई कुछ अपमान कर रहा हो तो दुर्वचन से प्रतिकार नहीं होता है। अगर कोई गाली दे रहा है तो गाली देने से ही शांति नहीं होती है, उसको सहना चाहिए। क्रोध से क्रोध की शांति नहीं होती। तो जो धीर पुरुष हैं, जो जानते हैं कि आत्मा और देह में अंतर है, हमारा न मान है और न अपमान है, वे किसी सम्मान को स्वीकार करते नहीं है मन से। भगवान ने गीता में इस समता की बड़ी प्रशंसा किया है, तथा मानापमान सुख दुख समय के ऊपर लाभा लाभ हो जया जय, कभी लाभ होता है, मनुष्य काम करता है, व्यापार करता है, कभी लाभ होगा, कभी आमदनी होगी और कभी घाटा भी हो जाएगा। ये स्वाभाविक है इस संसार में, लाभ अलाभ, लाभालाभ जया जय, कभी विजय होगी कभी पराजय होगी, इसमें सम रह करके मेरी भक्ति में लगा रहे, यही बुद्धिमानी है। भगवान ने बहुत प्रशंसा किया है समचित्त भक्त, समचित्त वाला संदर्श। जब ये स्थित प्रज्ञ का वर्णन कर रहे हैं वहाँ भी कहते हैं कि सम होना चाहिए। भूख प्यास से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्षोभ होना ये औन्नति का लक्षण है। भूख लगे उसको सहना चाहिए, प्यास को सहना चाहिए। अंततः प्रमाण तो भगवान ही है ना, भगवान ने जो कहा जो किया और उनके भक्तों ने जो कहा है किया है वही प्रमाण है। सब जगह सारी दुनिया में भक्त हुए हैं, महापुरुष हुए हैं और उन्होंने कुछ वचन कहा है भगवान के वचन के अनुकूल और कर्म किया है भक्ति परम। शिक्षा लेनी चाहिए, वाराणसी में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम कबीरदास है। कबीरदास बड़े शुद्ध भक्त थे लेकिन उनका अपमान करने लगे लोग। बहुत बड़े बड़े ब्राह्मणों ने कबीरदास को गुरु माना, उनकी ख्याति बढ़ गई, सब लोग आने लगे उनके शरण में। ऐसे काशी के ब्राह्मणों में बड़ी जलन हुई, उनको अपमानित करने के लिए उन लोगों ने एक सुंदरी स्त्री को नियुक्त किया और कहा कि तुम कबीरदास को ये कहो कि ये हमसे प्रेम करते हैं। उस सुंदरी वेश्या ने भरी सभा में बाजार में आकर के नाटक किया, रोने लगी और कहने लगी ये साधु बनता है, ये हमको रखा, हमसे प्रेम किया और अब साधु बनता है। तब कबीरदास जी शांत रहे और अंत में उन्होंने यही कहा कि तुम मेरे मालिक का उपहार हो, अगर तुम ये मानते हो कि मैं तुमको पत्नी बना करके रखा था तो ठीक है, मेरे साथ रहो। उसके बाद वो स्त्री फूट फूट करके रोने लगी, क्षमा मांगी कि आप सज्जन हैं, हमको तो कुछ ब्राह्मणों ने उकसा करके भेजा था कि जा करके ऐसा कहो, लेकिन मैं अफसोस करती हूँ, मैंने बहुत बड़े संत का अपमान किया मुझे क्षमा कीजिए। कबीरदास उसके बाद भी कुछ भी नहीं कहे प्रभु, कभी कभी ऐसा होता है किसी की ख्याति बढ़ती है तो दुष्ट लोग जलते हैं, उसका अपमान करते हैं, अनेक प्रकार का उत्पीड़न करते हैं, लेकिन साधुओं ने हमेशा सहन किया। काशी की घटना है, एक बार शाम हो गई थी, नौकाएं अब चलाना बंद हो गया था, तो कुछ लोग पार जाने के लिए तैयार थे। ये अयोध्या की घटना है। तो उस पर एक साधु भी आ गए नौका पर चढ़ने के लिए, तो नौका पर चढ़े हुए लोगों ने कहा दुष्टों ने कि जगह नहीं जाओ, और कोई दूसरी नौका नहीं थी, रात हो गया, शाम हो गया था, पार जाना जरूरी था, वे भी किसी तरह नौका पर चढ़ गए। अनेक प्रकार के व्यंग बोलते थे, ये साधु किस लिए बने हो, काम धंधा के डर से ये सब सहते रहे, चुपचाप थे। कोई उनका कमांडर छीनता था, कोई उन पर पानी उलीसने लगा, किसी तरह चाहते थे कि यह सरजू में गिर जाए साधु, खा करके मोटा बना है, नौका पर भार है, वजन बढ़ गया है, तू उतर जाओ ऐसा कह कर के पानी उछील रहे थे। अंत में उन साधु को फेंक दिए सरजू में, पर उनके मुख से केवल शब्द निकलता था, सीताराम सीताराम। हद हो गया तब आकाशवाणी हुई, हे संत महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन दुष्टों को मैं दंड देता हूँ। तो भगवान की वाणी थी, तो संत ने हाथ जोड़कर कहा नहीं प्रभु, ये अज्ञान में है, उनको आप क्षमा कीजिए। तब आकाशवाणी शांत हुई। उस दशा में भी संत के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ, ये सत्य घटना है। इतने अत्याचार के बाद भी ये शांत रहे, शरीर फेंक दिया उन्होंने जमने में सरजू में। फिर भी उनको कोई दुख नहीं हुआ, भगवान का नाम जपते रहे, सीताराम सीताराम। तो ऐसे ही संत महात्माओं ने किया है। हम लोग तो अंतर्राष्ट्रीय समाज में हैं, इस्कॉन में, तो इसलिए हम लोगों पर जिम्मेदारी भी है। बड़ी शांति से जीवन निर्वाह करना चाहिए, कभी क्रोध नहीं, कभी विवाद नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ही सिखाया है, कभी विवाद मत करो। अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, कभी संप्रदाय भेद से, कभी मत भेद से अपनी बात कहेंगे, यह ठीक है, पर परमत का दूषण नहीं करना चाहिए। पर मत दूसरे के ओपिनियन को खंडित नहीं करना चाहिए, सह लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि अपने संप्रदाय में, अपने पथ में अडिग रहना चाहिए, पर दूसरे मत की निंदा नहीं करना चाहिए और झगड़ा नहीं करना चाहिए कि हम ठीक हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने इसको करके दिखाया है, इसी वृंदावन में। एक बार जब सनातन गोस्वामी जी रहते थे यहाँ, जीव गोस्वामी जी रहते, तो उस समय एक बहुत बड़ा विद्वान कश्मीर से चला, विजय पत्र लिखवाते हुए, तो सभी ब्रजमंडल के विद्वानों ने कह दिया कि यदि आप वृंदावन में रहने वाले श्री सनातन गोस्वामी को पराजित कर देंगे शास्त्रार्थ में, तो हम आपकी विजय मान लेंगे। सभी लोगों ने ऐसा कहा। तब दिग्विजयी कश्मीर चला हुआ, वृंदावन आया खुलते हुए, टीला पर पहुंचा, मदन टीला पर। पहले ऊंचे टीले पर रहते थे सनातन से, पूछते पूछते पहुंचा और कहा कि आप सनातन गोस्वामी हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि जी हाँ, मेरा नाम सनातन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सनातन गोस्वामी, मेरा नाम सनातन है। बड़े ही नम्र भाषा में कहा, आपकी क्या सेवा करें, दिग्विजयी ब्राह्मण से। उसने कह दिया, ये देखिए विजय पत्र, और इस क्षेत्र में, काशी में, मिथिला में, उज्जैन में, सब जगह मैं जीत करके आया हूँ शास्त्रार्थ में। आप चाहें तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, मैं तो वृंदावन में आया हूँ, मैं भगवान का नाम जपता हूँ, मैं शास्त्र का नाम भी नहीं जानता, शास्त्र का अर्थ करने तो दूर की बात है, मैं क्या शास्त्रार्थ करूँगा, मुझे कोई शास्त्र का अर्थ नहीं आता है, शास्त्र का नाम भी पूरा नहीं याद है। जब इतना सनातन गोस्वामी ने कहा तब कहा कि तब ठीक है, तब इस विजय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। सनातन गोस्वामी ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिया, उस पर लिखा था कि मैं आपके शास्त्र पराजय प्राप्त किया, हार गया और हस्ताक्षर किया। तनिक भी शास्त्रार्थ नहीं किया, जबकि शास्त्र के वास्तविक अर्थ वही जानते थे। विवाद नहीं किया, स्वीकार कर लिया कि मैं पराजित हो गया, जबकि शास्त्रार्थ हुआ नहीं था, फिर भी उस पर दिग्विजय लिखा था कि मैं सनातन गोस्वामी के साथ शास्त्रार्थ किया, सनातन गोस्वामी ने पराजय स्वीकार करके ये हस्ताक्षर किया। वो आनंद से उस हस्ताक्षर को दिखाता हुआ झूम झूम कर घूमने लगा। मैं मथुरा आया, वृंदावन आया, बहुत बड़े विद्वान की कथा सुन करके और उसने पराजय स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आनंद में था, श्रीलजीव गोस्वामी को पता लगा, पता लगा कि हमारे ताऊ से इसने विजय पत्र लिखवाया है, हस्ताक्षर किए हैं। तो नया खून था जीव गोस्वामी का, उसको सह नहीं पाए। और दिग्विजय ने यह भी कहा कि तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। जीव गोस्वामी जी ने शास्त्रार्थ प्रारंभ किया, केवल एक दो प्रश्न में ही उसकी पूरी बेइज्जती कर दी। वो दिग्विजय परास्त होकर के अब तो अर्धमरा जैसा हो गया। कम वयस का एक साधु हमें परास्त कर दिया, यही सोचता था कहीं मैं मर जाऊं। तब जी वो समझ कहा कि सबसे पहले उस विजय पत्र को फाड़ो, मरने से तो आसान ही था ना, विजय पत्र फाड़ दिया वहीं पर। इसके बाद पूरे ब्रजमंडल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और सोचता था कि मैं कहीं जमुना में डूब करके मर जाऊंगा। और इस संवाद को सुनाने के लिए शिव गोस्वामी जी आए मदन किराने। अभी मंदिर बना नहीं था, किला था। उन्होंने सुना दिया कि उस दिग्विजयी कश्मीरी पंडित को मैं हरा दिया। इसको सुनकर के सातों गोस्वामी प्रसन्न नहीं हुए। बहुत दुखित हुए। कहने लगे, तुमको भजन का अधिकार नहीं है, तुम दूसरे के मान को सह नहीं सकते, दूसरे के सम्मान को सह नहीं करोगे, क्या भजन करोगे। इसलिए बेटर है तुम पूरब दिशा में चले जाओ। उनका आशय था कि बंगाल चले जाओ, लेकिन जीव गोस्वामी के लिए ब्रज छोड़ना बड़ा कठिन था। तो पूरब दिशा में चले गए, वृंदावन से पूरब दाऊ जी के पास महावन में चले गए। इसके बाद श्री सनातन गोस्वामी गए थे राधा कुंड, वहाँ जीव गोस्वामी से भेंट हुई। फिर उन्होंने जीव गोस्वामी की ब्रजवास निष्ठा को का स्वागत किया। ठीक है, तुम अच्छा किए, पूरब चले गए वृंदावन से पूरब। बहुत अफसोस किए। और रूप गोस्वामी पाद जब मिले सनातन गोस्वामी से, तो उन्होंने पूछा, भक्ति रसामृत संयोग पूरा हुआ? तब रूप गोस्वामी पाद ने कहा, यदि जीव यहाँ होता तो ये पूरा हो गया होता, अभी कुछ शेष बाकी है। जीव गोस्वामी अनेक शास्त्रों के उदाहरण देने में प्रेरित है, पुराण से, श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में यही सब दिया गया है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि जीव तो यही है, परंतु उसमें एक दोष है, दूसरे का अपमान करने में आनंद ले रहा है, दूसरे का मान सहन नहीं करता। तुम उसको सनातन गोस्वामी ने जो गोस्वामी कहा तुम उसको शिक्षा दो। तुम बहुत बड़े कवि हो, विद्वान हो, तो उसको शिक्षा दो, कुछ लिख करके भेजो। तब रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत लिखा। उपदेशामृत खास करके जीव गोस्वामी के लिए लिखा गया। इसमें बहुत ही कम श्लोक हैं, 13 श्लोक उसमें शिक्षा दी। और वह शिक्षा तब दिए जब सनातन गोस्वामी ने कहा लिखने के लिए। जी गोस्वामी जी का स्वभाव था अपने गुरुजनों का अपमान सह नहीं सकते, एक बार वृंदावन में आए श्रीपाद वल्लभाचार्य, बहुत बड़े आचार्य, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य वल्लभ पूरे ब्रज में विख्यात थे। तो आते ही उन्होंने पूछा सनातन रूप गोस्वामी से, मैं आपके ग्रंथ की प्रशंसा सुना, भक्ति रसामृत सिंह बड़ा सुंदर नाम है, मैं उसको जरा देखना चाहता हूँ। भक्ति रसामृत सिंह देखे, उसके बाद वल्लभाचार्य उसमें उन्होंने पढ़ा, भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय बात होते तावत भक्त सफल छात्र कथम अभिदय भगत। जब तक भक्ति और मुक्ति की इच्छा है पिशाची, तब तक भक्ति के सुख का उदय हृदय में कैसे होगा। श्रीमान वल्लभाचार्य बहुत प्रसन्न हुए इस श्लोक से, लेकिन थोड़ा केयर किया उन्होंने कि ये आप भक्ति और मुक्ति को, भक्ति भक्ति और मुक्ति को एक ही जगह रखने के ही बराबर पिशाची कह दिए, ये अनुचित लगता है। उस ग्रंथ पर उन्होंने रिमार्क किया कि मुक्ति बहुत बड़ी चीज है, समस्त भोगों की इच्छा छोड़ करके संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवान में मिल जाना, भगवान के पास हो जाना, भगवान का स्वरूप प्राप्त करना, ये सब मुक्ति के अंदर है। उसको कैसे अपने पिशाची कहा। मैं मानता हूँ भक्ति की वासना पिशाची है, लेकिन मुक्ति की वासना पिशाची आपने लिख दिया, ये थोड़ा अनुचित लग रहा है। और जीव गोस्वामी जी वहीं बैठे थे सुन रहे थे। स्वीकार किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने थोड़ा ही कहा कि केवल वासना को, मुक्ति की वासना को मैं पिशाची लिख दिया। हमारे समझ से यह उचित है। लेकिन श्रीपाद बल्लभाचार्य इसको उचित नहीं मानेंगे। वे अंत में जाने लगे, उनको मथुरा जाना था, तो जीव गोस्वामी भी उठ करके जाने लगे। कुछ कृत्य बाकी है स्नान वगैरह जमुना में, मैं हुआ रूप गोस्वामी से परामर्श लेकर भी चले गए। आचार्य वल्लभ के साथ पथ में जाते समय उन्होंने कहा कि आपने कैसे भक्तिर समय संधु पर आक्षेप किया, इसमें जो लिखे हैं रूप गोस्वामी बहुत सुंदर लिखे हैं, अनेक भागवत के श्लोकों से हमने सिद्ध किया कि मुक्ति की वासना पिशाची है, मुक्ति प्राप्त होना पिशाची नहीं, मुक्ति की वासना मुक्ति मुक्ति स्प्रिया है। जब तक मुक्त होने की वासना है या संसार के भोगों की वासना है, इस वासना के रहते हुए भक्ति वासना आती नहीं है, भगवान की सेवा की वासना नहीं आती। भागवत के अनेक प्रसंगों में ये बात दिखाया जीव गोस्वामी ने। अंत में श्रीपाद वल्लभ कह दिए कि ठीक है, मैं अपने वचन को वापस लेता हूँ, उचित नहीं कहा, अवश्य मुक्ति और भक्ति की वासना पिशाची है। इसके रहते हुए भक्ति की वासना का उदय नहीं होता है, भक्ति सुख का उदय नहीं होता है। इसी के बाद सनातन गोस्वामी ने राधा दामोदर मंदिर के पास कहा कि इसको शिक्षा की जरूरत है, उपदेश की जरूरत है, इतने बड़े आचार्य का अपमान किया। जब ब्रजमंडल में ही नहीं कई जगह विख्यात है, इसको शिक्षा की जरूरत है, उपदेश की जरूरत है। तब उपदेशामृत लिखा गया, जिसमें पहले ही श्लोक में पहला शब्द है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्भव पश्च वेगम एतन वेगान यो विषयत धीर सर्वमपि मम पृथ्वीम शिष्य। सबसे बड़ा वीर वह है जो इन वेगों को धारण करता है, जिसमें पहला है वाचो वेगम वाणी का वेग, कुछ बोलने की वासना होती है, खास करके दूसरे का उत्कर्ष सहन न करने की भावना होती है, तो आदमी कुछ जवाब देता है बोलता है, पर रोक लेना चाहिए वाणी को। वाचो बेगम या कहीं अपने गांव का या संबंधी मिलता है तो अवश्य बोलने की वासना होती है, बोलू। वाणी को रोक लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। वाचो बेगम ये वेग होता है बोलने का, ऐसे वेग को रोक ले तो बहुत बड़ा वीर है। वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, और मन में कभी कभी अपमान होने पर उत्पटांग बात सुनने पर क्रोध होता है, ये क्रोध मन का वेग है, मन में क्रोध होता है। वाणी से व्यक्ति न कहे, मन में पिछपिछा जाए, क्रोध होता है, ये भी ठीक नहीं है। मन से क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम और अस्वाद का वेग, कोई स्वादिष्ट पदार्थ खाने के लिए लालसा, अगर हो तो इसको वेग को रोकना चाहिए। यह नहीं कि यह सोचे क्या हम थोड़ा खा लें, नहीं, जीवा बेगम उदरोपस्थ बेगम और उदर का वेग, भूख न सहा जाए, इसको उदर वेग कहते हैं। उदर के वेग को सह जाए, उपस्थ वेग, और जननेन्द्रिय के वेग को रोक ले तो वह वीर सारी पृथ्वी पर शासन कर सकता है। जो अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है, वह सारी पृथ्वी को कंट्रोल कर सकता है, सारे मनुष्यों को। तो ये कंस के संसद में मंत्रियों की बैठक है, वो बोल रहे हैं, बहुत सुंदर शिक्षा है। यद्यपि उस शिक्षा का उद्देश्य ठीक नहीं है, वे दुष्ट मंत्री देवताओं का वध चाहते हैं, विष्णु का वध चाहते हैं। उनका इंटेंशन ठीक नहीं है, लेकिन उनकी बात बहुत सुंदर है। जैसे इंद्रियां उपेक्षा कर दिए जाने पर अपने बस में नहीं रहती, रोग की यदि प्रारंभ में चिकित्सा न की जाए, उचित औषध न लिया जाए और सुपथ्य सेवन न किया जाए, तो रोग बस में नहीं होता है, समझ नहीं होता है। ऐसे ही शत्रु कमजोर भी है तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, दमन करना चाहिए। बहुत सुंदर शिक्षा है, इंद्रियों का दमन बहुत जरूरी है। हम लोगों को तो कोई शत्रु है नहीं, शत्रु यही इंद्रियां हैं। दुर्जय इंद्रियां हैं, वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदरोपस्थ बेगम, एतन बेगान विषयत धीरा सर्वान पिंडन, पृथ्वी से शिष्य, सारी पृथ्वी पर शासन कर सकता है जो इंद्रियों पर शासन किया। सबसे बड़ी वीरता है अपने इंद्रियों को भगवान में लगा देना, इनको स्वतंत्र नहीं छोड़ना। इंद्रिय ग्राम इंद्रियों का समूह है और प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय को चाहती है। जीवा दूसरे इंद्रिय के फेर में नहीं रहती है, दूसरा कुछ मिले या ना मिले लेकिन खाने को मिलना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। और जीवा विचार नहीं करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम चाहे जो कुछ हो लेकिन हमको अच्छा लगना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। इसलिए सावधान रहना चाहिए, कभी इस जीवा को स्वतंत्र छोड़ना नहीं चाहिए, कभी कोई बिना भगवत अर्पित वस्तु न खाए न पिए। क्योंकि कंस के सभा में मंत्रियों की ये बात है और भागवत में क्रम से आया है, इसीलिए मैं इसको लिया। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्ण। इसी कृष्ण बलराम की।